ये आकाशवाणी दिल्ली है। संविधान दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान सदन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वोच्च न्यायालय में कार्यक्रम में कहा, संविधान देश की हर अपेक्षा और आवश्यकता पर खरा उतरा है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2011 में संशोधनों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री आतिशीनी रोहिणी के राष्ट्रीय कैडेट कोर भवन में शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया और 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला दिल्ली के भारत मंडपम में जारी। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी नागरिकों से 2047 तक विकसित भारत बनाने का राष्ट्रीय लक्ष्य हासिल करने की दिशा में अपने बुनियादी कर्तव्यों को निभाने के लिए अपने आचरण में संवैधानिक आदर्शों को अपनाने का आग्रह किया। संविधान दिवस पर आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में एक भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान को एक सजीव और प्रगतिशील दस्तावेज बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए हाल के वर्षों में कई उपाय किए हैं।
सरकार ने समाज के सभी वर्गों, विशेषकर कमजोर वर्गों के लोगों के विकास के लिए अनेक कदम उठाए हैं। ऐसे निर्णयों से लोगों का जीवन बेहतर हुआ है तथा उन्हें प्रगति के नए अवसर मिल रहे हैं। गरीब लोगों का अपना पक्का घर, बिजली पानी, सड़क की सुविधा, खाद्य सुरक्षा और चिकित्सा सेवाएं मिल रही है। ये बड़े पैमाने पर विश्व स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है।
राष्ट्रपति ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण से संबंधित नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किए जाने की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम ने महिला सशक्तिकरण के नए युग का सूत्रपात किया है।
वुमेन लेड डेवलपमेंट की सोच को यथार्थ रूप देना सामाजिक न्याय के संवैधानिक आदर्शों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम द्वारा हमारे लोकतंत्र में महिला सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत की गई है।
इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि ये महत्वपूर्ण दिन देश के संविधान को अंगीकार करने के 75 वर्षों के एक ऐतिहासिक पड़ाव को चिन्हित करता है। ये विश्व के सबसे बड़े और अत्यधिक गतिशील लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि भारत उल्लेखनीय आर्थिक विकास, मजबूत बुनियादी ढांचे और व्यापक स्तर पर डिजिटल उपयोग के साथ आगे बढ़ रहा है। इन सभी उपलब्धियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संविधान देश की हर अपेक्षा और आवश्यकता पर खरा उतरा है और ये नागरिकों के लिए मार्गदर्शक है। श्री मोदी आज नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय में संविधान दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संविधान देश के वर्तमान और भविष्य का मार्गदर्शक है। श्री मोदी ने कहा कि संविधान ने पिछले 75 वर्षों में देश के सामने आई चुनौतियों का समाधान खोजने का सही रास्ता दिखाया।
हमारा संविधान हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य का मार्गदर्शक है। बीते 75 वर्षों में देश के सामने जो भी चुनौतियां आई हैं, हमारे संविधान ने हर उस चुनौती का समाधान करने के लिए उचित मार्ग दिखाया है। इसी कालखंड में आपातकाल जैसा समय भी आया और हमारे संविधान ने लोकतंत्र के सामने आई इस चुनौती का भी सामना किया। हमारा संविधान देश की हर जरूरत, हर अपेक्षा पर खरा उतरा है। संविधान से मिली शक्ति की वजह से ही आज जम्मू कश्मीर में भी बाबा साहब का संविधान पूरी तरह लागू हुआ है।
श्री मोदी ने कहा कि आज ही मुंबई में हुए आतंकी हमले की बरसी भी है। उन्होंने इस हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने देश का ये संकल्प भी दोहराया कि भारत की सुरक्षा को चुनौती देने वाले हर आतंकवादी संगठन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारतीय न्यायपालिका की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 भी जारी की।
इस हमले में जिन व्यक्तियों का निधन हुआ उन्हें मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं देश का ये संकल्प भी दोहराता हूं कि भारत की सुरक्षा को चुनौती देने वाले हर आतंकी संगठन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। श्री सक्सेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि संविधान सभी नागरिकों को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ता है। उपराज्यपाल ने कहा कि इस अवसर पर सभी भारत के संविधान की भावना के प्रति खुद को समर्पित करें। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ और आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस पर पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पार्टी की प्राथमिक विचारधारा सभी लोगों की सेवा करना और सभी का सम्मान करना थी, जो भारत के संविधान की आत्मा थी। दिल्ली विधानसभा में आज संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलाई। इस दौरान श्री गोयल ने लोकतंत्र में संविधान की उपयोगिता बताते हुए कहा कि संविधान हमारी लोकतंत्र की आत्मा और नागरिकों के अधिकारों का रक्षक है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने उपभोक्ताओं को ठगी और धोखाधड़ी से बचाने के लिए दिल्ली विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2011 में संशोधनों को मंजूरी दे दी है। इन संशोधनों के तहत गैर मानक बाट और माप पद्धति का इस्तेमाल करने वालों पर जुर्माने की राशि बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। उपराज्यपाल कार्यालय ने बताया कि गैर मानक बाट और माप उपकरण का इस्तेमाल करने वाले निर्माताओं पर जुर्माने की राशि 2,000 रुपए से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए करने का प्रावधान किया गया है, जबकि गैर मानक पैकेज बेचने पर खुदरा विक्रेताओं पर 2,500 रुपए के बजाय 5,000 रुपए और विनिर्माताओं पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आज रोहिणी के राष्ट्रीय कैडेट कोर भवन में शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस अंडरग्राउंड शूटिंग रेंज में बुलेट प्रूफ सीलिंग, 6 फायरिंग लेन और इलेक्ट्रॉनिक टारगेट कंट्रोल सिस्टम जैसी उच्च तकनीक की सुविधाएं मौजूद हैं। सुश्री आतिशी ने कहा कि इस शूटिंग रेंज के माध्यम से भविष्य में ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों को तैयार करने में सहायता मिलेगी।
अब दिल्ली के बच्चे, दिल्ली के स्पोर्ट्स पर्सन, चाहे वो गरीब से गरीब परिवार से आते हों, लेकिन अगर उनमें शूटिंग का टैलेंट है तो कोई भी इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट, पैसे की वजह से वो पीछे नहीं रहेंगे। उनको दिल्ली सरकार की तरफ से जरूर अवसर मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, देश के लिए मेडल लाने का मौका मिलेगा।
उपराज्यपाल कार्यालय ने बताया कि यमुना वाटिका दिल्ली के लोगों के लिए शांतिपूर्ण विश्राम स्थल के रूप में फूलों का मैदान बनने जा रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल कार्यालय ने बताया कि यमुना वाटिका यमुना के पश्चिमी तट पर लगभग 450 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। पोस्ट में कहा गया है कि दिल्ली में प्रकृति को बहाल करने के लिए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना प्रतिबद्ध हैं। दिल्ली मेट्रो की फिल्म पिलर्स ऑफ प्रोग्रेस द एपिक स्टोरी ऑफ दिल्ली मेट्रो गोवा में 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिखाई गई। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने बताया कि 30 मिनट की ये फिल्म गैर फीचर फिल्म श्रेणी के अंतर्गत प्रतिष्ठित भारतीय पैनोरमा में दिखाई गई। DMRC ने बताया कि ये फिल्म दिल्ली मेट्रो के निर्माण की प्रेरक कहानी से अवगत कराती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने ट्रेन की वास्तविक समय जानकारी और पार्किंग स्थान की उपलब्धता की जानकारी के लिए RRTS कनेक्ट ऐप का शुभारंभ किया। NCRTC ने बताया कि इस लाइव ट्रेन ट्रैकिंग ऐप का उद्देश्य यात्रियों को ट्रेन के आगमन और RRTS स्टेशनों पर लाइव पार्किंग स्थिति की सटीक जानकारी देना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जारी है। इस मेले का विषय विकसित भारत एड 2047 है। 14 दिवसीय यह मेला वैश्विक स्तर पर भारत की आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया है यह देश के सबसे बड़े व्यापार आयोजनों में से एक है, जिसमें बड़ी संख्या में आगंतुक पहुंच रहे हैं। एक रिपोर्ट।
भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2024 में लोग बड़ी संख्या में घूमने और खरीदारी करने आ रहे हैं। बीते रविवार को 1.5 लाख से अधिक आगंतुक मेले में घूमने आए। व्यापार मेले में आए हुए लोग सूखे मेवे, बैग, पर्स, फर्नीचर के सामान, कपड़े, जूते, खिलौने, अचार, तेल, मसाले, गजक और सजावटी सामान के स्टॉल्स पर बड़ी संख्या में खरीदारी करते हुए देखे जा सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी विभागों के पवेलियन, प्रदर्शनियां और स्टॉल भी आगंतुकों लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। मेले में लोगों को आकर्षित करने और अधिक से अधिक अपने स्टॉल पर बुलाने के लिए क्विज, पजल और नुक्कड़ नाटकों का भी आयोजन किया जा रहा है। घूमने के दौरान लोगों को लगने वाली भूख का खास ख्याल रखते हुए मेले में एक फूड कोर्ट भी बनाया गया है। फूड कोर्ट में आगंतुक लिट्टी चोखा, सरसों का साग और मक्के दी रोटी, छोले भटूरे, बिरयानी, घुगनी चावल, गलौटी कबाब, मछली फ्राई और डोसा जैसे विभिन्न राज्यों के स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले रहे हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में गुरुग्राम से आए आगंतुक मनीष ने मेले में विभिन्न संस्कृतियों और व्यापार के संगम को देखने पर अपने अनुभव साझा किए।
मेले का एक्सपीरियंस अच्छा है, लोगों को अपनी जरूरत की चीजें भी मिल जाती है और कुछ ऐसी चीजें भी मिल जाती है जो की नॉर्मली हमको अवेलेबल नहीं होती है, खासकर जो छोटे एमएसएमई उद्योग है, उन माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस है, उनके द्वारा बनाई हुई चीजें वो साल भर में एक बार हम आके ले जाते हैं। अलग अलग स्टेट का कल्चर भी देखने को मिलता है।
मेले में पहली बार घूमने आई एक अन्य आगंतुक अमृता ने भी अपना अनुभव साझा किया।
मुझे यहाँ का एक्सपीरियंस काफी अच्छा लगा, नई नई चीजें देखने को मिली, कई आर्टिस्ट ने अपने आर्ट प्रेजेंट किए थे, अलग अलग स्टेट्स के बारे में जानने को मिला।
इस वर्ष मेले में 3000 से अधिक प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। कल इस मेले का आखिरी दिन है। प्रादेशिक समाचार के लिए सकलेन अख्तर।
भारत का अगले 10 वर्षों में विश्व के कुल दूध का एक तिहाई उत्पादन करने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर आकाशवाणी से विशेष बातचीत में गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ के प्रबंध निदेशक जयन मेहता ने कहा कि अमूल महासंघ ने इस लक्ष्य के लिए बड़ी भूमिका निभाने का संकल्प लिया है। अमरीका के बाद यूरोप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अमूल तैयार है।
आज भारत में विश्व का करीबन 25% दूध का उत्पादन हो रहा है और अगले 10 सालों में ये अंदाजा है कि विश्व का एक तिहाई दूध भारत में उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि विश्व के हर एक डाइनिंग टेबल पे भारत की फूड आइटम होनी चाहिए, तो उस हिसाब से अमूल को भी डेयरी टू द वर्ल्ड बनने का एक विजन पे हम काम कर रहे हैं। 2 लाख गाँव में दूध बन गया, अगले 5 से 10 साल में बनेगी, ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इस क्षेत्र में आएंगी।
केंद्र सरकार ने 15 राज्यों के लिए आपदा राहत और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए 1,115 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंजूर की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने इस कोष को मंजूरी दी। एक रिपोर्ट।
समिति ने 8 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 378 करोड़ रुपए, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए 139 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र के लिए 100 करोड़ रुपए, कर्नाटक और केरल के लिए 72 करोड़ रुपए और तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल के लिए 50 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। उच्च स्तरीय समिति ने 115 करोड़ से अधिक रुपए के कुल बजट आवंटन के साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिक रक्षा के प्रशिक्षण तथा क्षमतावर्धन के लिए एक अन्य परियोजना की भी मंजूरी दी है। मंत्रालय ने बताया कि भारत में आपदा जोखिम शमन प्रणाली को सशक्त बनाते हुए आपदाओं के दौरान जान माल के व्यापक नुकसान को रोकने के लिए कई उपाय किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नेहा गोस्वामी।
सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के स्थान पर बैलेट पेपर का उपयोग करने का निर्देश देने की मांग की एक जनहित याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और पीबी वराले की पीठ ने ईवीएम में कथित हेरफेर के कारण बैलेट सिस्टम पर लौटने की मांग को आज खारिज कर दिया। निर्वाचन आयोग ने आज राज्यसभा की 6 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की। 3 सीट आंध्र प्रदेश में जबकि ओडिशा, पश्चिम बंगाल और हरियाणा में एक एक सीट है। उपचुनाव की अधिसूचना 3 दिसंबर को जारी की जाएगी। 10 दिसंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। मतदान और मतगणना 20 दिसंबर को होगी। दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 11.9 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और आसपास के इलाकों में आमतौर पर मौसम सामान्य रहेगा, हालांकि सवेरे के समय कोहरा छाए रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संविधान दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान सदन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वोच्च न्यायालय में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि संविधान देश की हर अपेक्षा और आवश्यकता पर खरा उतरा है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2011 में संशोधनों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री आतिशी ने रोहिणी के राष्ट्रीय कैडेट कोर भवन में शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया और 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला दिल्ली के भारत मंडपम में जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।